अगला टॉपिक देखते हैं, अहले इल्म और माल। 64 पेज है, बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि माल से किसी को मफर नहीं है, तो उसके साथ क्या ताल्लुक होना चाहिए। माल बजाते खुद मजमूम नहीं, मजमूम किसको कहते हैं, मजम्मत जिसकी की जाए बुरा, इसका बुरा इस्तेमाल इसे मजमूम बना देता है। ये ऐसी ना जैसे छुरी अपनी जगह बुरी तो नहीं है, लेकिन उसी छुरी से किसी का गला काट दें, किसी को ज़ख्म लगा दें, तो फिर छुरी का इस्तेमाल बुरा। हमारे असलाफ माल को दूसरों के सामने हाथ फैलाने से रोकने के लिए रखते थे। माल से क्या फ़ायदा लेना है कि मैं अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करूं, कोई मुझे क्यों दे, किसी की क्या ज़रूरत है। मैं हाथ फैलाऊं यानी अपना माल संभाल लूं, और दूसरे सोचे इसके पास माल नहीं है, ये बेचारा भूखा नंगा लगता है, सर्दी है तो इसके कपड़े पतले हैं, और बड़ा दुखी दुखी शक्ल बना के लोगों में आना ये पसंदीदा अमल नहीं है। हकीम बिन कैस रहमहुल्ला के वालिद ने इनसे कहा, फर्जंद माल जमा कर, क्योंकि माल शरीफों को बुलंद करता और कमीनों से मुस्तगनी कर देता है। कैसे समझे इस जुमले को, कहते माल जमा करो, क्यों, शरीफों को बुलंद करता है, माल होगा तो बुलंदी मिलेगी, और कमीने कौन होते हैं, नीच कम अखलाक वाले, उनसे मुस्तगनी कर देता है। यानी आपको ज़रूरत पड़ी आप किसी ऐसे शख्स के पास चले गए जिसका दिल छोटा है, कंजूस है, थोड़ा दिला है, तो आपको उसके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा ना, तो कहा नहीं खुद माल जमा करो, किसी ऐसे के पास जाओ ही ना जाओ तुम्हें कि माफ़ करो मैं बस नहीं है। देखिए किसी से कुछ मांगे और वो ना दे कितनी शर्म आती है, तो ज़रूरत के लिए माल को अपने पास रखना पसंदीदा है। सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह कहा करते थे, वल्लाह वो आदमी किसी काम का नहीं जो अपनी आबरू बचाने और अमानत पूरी करने के ख्याल से माल जमा नहीं करता। इसकी मिसाल दो, बेगर्स फ़कीर, शायद इनके घरों में घड़ों में पड़े हुए माल के ढेर होंगे, लेकिन सड़कों पे हर वक्त यही दे दो ले लो ले लो, बच्चों को उठा के फिरती हैं। याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो हाथ एक दफ़ा किसी के आगे खुल गया ना वो पीछे नहीं आता, और आज भी देखे एक दफ़ा किसी को दे के देखे चंद दिन बाद वो दोबारा आपके दर पे आएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना बनाए। अबू क़लाबा रहमतुल्लाह का कौल है, अल्लाह के शुक्र गुजार हो तो माल तुम्हें ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। देखिए हम तो सोच रहे थे शायद इल्म वाले और माल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो फिर उस्मान गनी किधर गए, अब्दुलरहमान बिन औफ किधर गए, माल था तो इतना ख़र्चा हुआ ना अल्लाह के रस्ते में, आज भी माल नहीं होगा तो बताइए ये काम होंगे, ये माइक आ सकता था अगर माल ना होता, ये कारपेट बेच सकता था, ये हर दिन जो चीज़ें आ रही हैं ये किस चीज़ से आ रही हैं, पैसों से आ रही हैं, तो पैसे ना हों तो मांगे या फिर ना करें, फिर सहूलतें ना दें दीन के कामों में, तो माल है ना, तो माल बहुत प्यारी चीज़ है। सिर्फ बात यह है कि जब हम अपने माल को बचा लेते हैं और अल्लाह के दीन को गरीब छोड़ देते हैं, ये ख़तरे की बात है। अपनी ज़ात पे तो एक एक वक्त में हज़ारों लग जाएं, और बाकी चीज़ों पे हो सकता है जितने में हमारा एक जोड़ा बनता है किसी गरीब के घर में पूरे महीने का राशन आ जाए। और अब तो मैं पूरे शऊर से कह सकती हूँ, पहले तो हम झिझक के कहते थे, आज तो एक जोड़े की कीमत एक बेड के बराबर है। आप अपनी बेटी को एक जोड़ा कम दे दें और उसकी जगह बेडरूम सेट ले दें, एक बराबर है। आपका एक जोड़ा आपके ड्राइवर आपके घर के नौकरों के पूरे महीने के खर्च से भी ज़्यादा है, गलत कह रही हूँ। इतनी जरूरत बढ़ गई, इतना अपने नफ्स को पूजा, अपनी ज़ात को इतना बड़ा समझा कि तुम इतना कपड़ा महंगा खरीद सकते हो, इतना महंगा, चलिए जेवर किसी ने बना लिया मुश्किल आई बिक जाएगा, ऐसे ही है ना, रीसेल चीज़ कितनी भी महंगी ले लेना वो महंगी नहीं होती, बिक जाएगी। जोड़े किसने पहनने हमारे, एक दफ़ा तन से लगा के देखें, 1 लाख वाला 1000 का भी कोई नहीं लेता, हर एक के नए अरमान नई चॉइस अपनी मर्जी अपनी पसंद, को पहनता है किसी का उतरा हुआ इल्ला माशाल्लाह। तो लिहाजा माल को ज़रूरतों के लिए रखना है, ना कि उसको तईशात के लिए। अब्दुलरहमान बिन अबज़ार रहमतुल्लाह का कौल है, दौलत दीन का क्या ही अच्छा सहारा है। ये बातें जो भी कर रही हूँ, दौलत ना हो तो दीन कैसे पनपे, आप बताइए। जब हमारे मुल्कों में दौलत हटी तो दीन की जगह कैसी हो गई, टूटी हुई कुर्सियाँ, फटीचर, सारे शहर नहीं तो चले मोहल्ले का फालतू तो समाज मस्जिद में, टांग टूट गई कुर्सी की मस्जिद में छोड़ो, फ्रिज खराब हो गया खड़खड़ कर रहा है मस्जिद में लगाओ। सच बताएं, इतना गरीब है हमारा दीन? क्या हमारा दीन मुफलिस है? क्या दीन वाले गरीब होते हैं? क्या सिर्फ गरीबों माड़े और बेकार करीम ऐसे लोग जिनके ना दुनिया अच्छी ना कुछ, वो जाके दीन के साथ लग जाए? क्यों भाई, आराम से बैठिए। सबसे ज्यादा अगर किसी को भी अच्छा होने का हक है तो वो दीनदार को है। ज़रूरत यह है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, दिखावा नहीं, शोहरत नहीं, नमूदो नुमाइश नहीं, दूसरों को जलाना नहीं। आज क्या मसले, उसने पहन लिया मैं नहीं पहनूंगी। हर शादी दूसरी शादी से बड़ी नहीं है? अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए एक खादिम और एक सवारी काफ़ी है, यानी अपनी ज़रूरियात पूरी करो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, नेकियों में पेश कदमी करो, माल हासिल करो और लोगों पर बोझ मत बनो। आपको तक एक मर्द का बिला वजह हाथ तोड़ के घर बैठे रहना पसंदीदा नहीं है। ऐसे मर्द जो कमा सकते हैं और नहीं कमा रहे, कल क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा। सुफियान सॉरी का कौल है, आलिम इस उम्मत का तबीब है। तबीब कौन होता है? डॉक्टर, हकीम, तिब से। और माल इस उम्मत की बीमारी है, अगर तबीब ही बीमारी मोल ले ले तो इसका इलाज कौन करेगा? यानी अगर इल्म वाले भी माल कमाने पीछे भाग जाएं और माल ही के भावताव करें तो इल्म कौन देगा? आज भी आप देखिए, जो लोग फुल टाइम अपने आप को दीन के लिए डिवोट करते हैं वही दीन की खिदमत करते हैं ना। और अगर एक मौलवी साहब बेचारे घर में काम भी है, मस्जिद में भी 5 वक्त नमाज पढ़ानी और कमाने भी जाना और सारी डीलिंग्स भी करनी, वो फोकस होके मस्जिद में काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है कि असल बात यह है कि ज़रूरियात की हद तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखना चाहिए। अबू सुलेमान दुर्रानी रहमहुल्लाह ने कहा, हमारे नज़दीक ये इबादत नहीं कि पाँव बस यार कर बैठा रहे और दूसरे इसके लिए काम कर करके थक जाएं। पहले अपनी 2 रोटियों की फिक्र करें। कितनी प्यारी बात है। हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि हाथ पे लाओ जी हम चंदा दें, हमें मस्जिद बनानी है चंदा दो। क्या आज ऐसा नहीं है? पहले पढ़ते हुए मांगते हैं, फिर पढ़ने के बाद पढ़ाने के लिए मांगते हैं। क्या आज हमारे कल्चर में सड़कों के किनारे चंदा बॉक्स, मस्जिदों में लोग हैं उनको फंडिंग चाहिए, ये तस्वीरें नहीं दिखती? ये तो बहुत ही बुरा इस्लाम का मिजाज है। क्या आपने मैंने कभी किया? रात को खाने पे 20 लोगों ने आना है तो आप और मैं निकल जाएं मोहल्ले में, पैसे दे दो खाना पकाना है, थोड़े से पैसे दे दो आज गोश्त लाना है, करता है कोई? सर शर्म से झुक जाए, दीन के लिए क्यों मांगते हैं? याद रखिए, सच्चा दीन होगा और लोग देखेंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग आपके पास लाके आएंगे क्योंकि उनको पता है हमारा हिस्सा पड़ेगा। आप ठीक काम करें लोग खुद देंगे आपको, मांगेंगे चंदा बक्स में रुपया रुपया डालेंगे। सही काम करें एक बंदा ही आपको हज़ारों दे जाएगा कि आप हमारा हिस्सा डालें भाई, हमें लग रहा है कि इधर देने से हमें फ़ायदा होगा। तो दीन अंदर की खैर को बाहर लाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसा दीन लेने और देने वाला बना दे। इन्हीं का एक कौल ये भी है कि तिजारत बजाते मकसूद नहीं बल्कि लोगों से बेनियाज होने, बाल बच्चों की ज़रूरियात पूरी और भाइयों से तआवुन करने के लिए है। अगर मकसूद माल जमा करना हो और इस पर फख्र करना हो तो ये बुरी बात है। बात समझ रहे हैं? बहुत सिंपल बात है। इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं, माल वही मज़मूम है जो नाजायज़ तरीक़ों से कमाया जाए। यानी असल मसला ये नाजायज़ हो, अल्लाह की नाफरमानियों से जमा किया जाए और लगे भी ना जाए इस पर, ये सबसे इशू मुश्किल है। उलमा को अपने पास इतना माल ज़रूर रखना चाहिए कि किसी से ज़रूरत पड़ने पर सवाल करने की नौबत ना आए। इसके लिए या तो हुनर सीखें और साथ साथ 4-5 घंटे के लिए कस्बे मौज भी कर लिया करें, या किसी काबिल एतमाद शख्स के साथ शराकत करें और इससे जो आमदनी हो वो अपने काम में लाएं। सवाल करना जिल्लत है और देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है, इसलिए देने वाले बने ना के लेने वाले। रहा दीनी काम तो ये बग़ैर पैसों के भी किया जा सकता है, मसलन तबलीग करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरों को अगर रोज़ाना 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ा दिया जाए तो इसके लिए भी किसी माल की ज़रूरत पेश नहीं आती। खुलासा क्या निकला? لیکن سورت قصص کی آخری آیتوں میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے کانسیپٹ کلیئر کیا گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ یہ ایک بڑا کانٹراورشل قسم کا ایشو ہے کہ جی دین کے ساتھ مال، یا مال رکھا جائے، مال کمایا جائے کہ نہیں، اور اتنی بری سوچ دے دی گئی کہ ایسے لگتا ہے کہ سارے مال والے آگ میں ہی جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کا مال لو اور اس میں سے اپنی آخرت کا حصہ نہ بھولو اور دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو. ایک واقعہ سنا کے بتا دیتی ہوں بات کو، کہ ایک شخص نے بادلوں میں سے آواز سنی، اسقی فلانا، فلاں کے باغ میں جا کر برسو. حیرت ہوئی، اس بادلوں میں سے آواز آئی، اس نے دیکھا وہ بادل گیا، دور جا کر ایک جگہ گرا، وہاں سے ایک نالے کی صورت میں پانی نکلا اور کسی ایک شخص کے کھیت میں پانی چلا گیا، ارد گرد سب کے کھیت خشک. اب اس کو حیرت ہوئی، بیٹھ گیا. ادھر مالک آیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام اس نے بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا. اب اور بھی تجسس ہوا، کہنے لگا یہ بتاؤ تیری کیا نیکی ہے، سب کے باغ خشک ہیں، تیرا باغ بڑا ہرا ہے. کہنے لگا کوئی خاص نیکی نہیں، بس یہ پتا ہے کہ جب اس باغ کا پھل آتا ہے تو اس کے تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر، بیوی، بچوں کی ضروریات، یعنی اپنے پر لگاتا ہوں، دوسرا لوگوں پہ خرچ کرتا ہوں، فی سبیل اللہ، مہمانوں پہ، غریبوں پہ، صدقہ، یعنی اللہ کا حق دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ سنبھال لیتا ہوں، سیو کرتا ہوں، اس سے اگلے سال کا بیج خریدتا ہوں. فرمایا بس اللہ کو تیری بانٹ پسند آ گئی. تو سیدھی سی بات ہے، مال من اقتصد، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا جس نے درمیانہ راستہ اختیار کیا. میں نے 5-6 ہزار پے سے چلے، آج کے سال میں 10-12 ہزار ہوں گے، اتنی پے والے مردوں کی بیویوں کو بھی ساری زندگی عزت کے ساتھ گزارے کرتے دیکھا. بھرم رکھ کے مہمان آئے گا، بہترین کھانا، اور کہنا کیا، بس صبح ہی مرغی کھائی تھی، بس ابھی کھایا تھا وہی کھایا تھا، اور اکیلے میں ہو سکتا ہے دال چٹنی کھاتے ہوں، اور سگڑاپا اتنا کہ ایک مہینے اگر گوشت نہیں آ رہا نا بقرعید پہ، تو اس پیسوں کو بچا کر اس سے کوئی ڈنر سیٹ خرید لیا. تو عورت کی اصل چیز خود سلیقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مال کو صحیح طرح لینے والا بنائے. الحمدللہ یہاں آج اتنے رکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.